आवाजों का मतलब क्या है। एक चहचहाने वाले अलार्म चिपरिंग अलार्म की आवाज का मतलब है कि आपको बैटरी या अलार्म को तब्दील करने की जरूरत है। एक बीपिंग अलार्म का मतलब है कि बाहर निकलें, बाहर रहें, 911 पर कॉल करें। आप और आपके खानदान को Brampton.com पर जाकर आग से जो हिफाजत के अलार्म्स हैं उसको जानिए, सीखिए और जानिए कि कीमती जान कैसे बचाई जा सकती है। आग से रोकथाम का हफ्ता इमरिच की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
रेडियो मसीह की आवाज़ टोरंटो आपसे मुखातब है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुहीब नाम में तमाम सामईन की खिदमत में प्यार भरा सलाम, गुड मॉर्निंग। आप सबको आज के दिन हम हैप्पी थैंक्सगिविंग कहते हैं। आप जानते हैं कि कनाडा में ये थैंक्सगिविंग वीकेंड मनाया जा रहा है और हमारी तरफ से तमाम रेडियो मसीह की आवाज़ और उसकी टीम की तरफ से तमाम सामईन की खिदमत में हम हैप्पी थैंक्सगिविंग करते हैं और दुआ करते हैं, आपको पेश करते हैं। हमारी दिली दुआ है कि खुदावंद आपके साथ हो और इस दिन को आए खुदावंद हम शुक्रगुजारी के साथ भी गुजार सकें। हम अपने टॉपिक की तरफ ही चलेंगे, जो कि आज का टॉपिक लिया गया है वो मैं बाद में बताऊंगा। आपका होस्ट कमलदीन और जनाब पास्टर जेम्स लूक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद ताला का शुक्र करते हैं कि उसने बड़ी शफकत से हमें नया दिन दिखाया। उसके जलील नाम की तारीफ अब्दुलबाद हो। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर इतवार हमारे साथ होते हैं और खुदावंद के जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं। कलाम फरमाता है, ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है वो है डिवोर्स। आज हम टॉपिक के ऊपर ही ज्यादा पारिशा बात करेंगे ताकि हम वक्त को जाया ना करते हुए इस सारे टॉपिक को जो पारिश साहब ने थीम ली है उसे कवर कर सकें, ताकि बाद में मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकूं। प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक AM 770 मीटर बैंड पर क्राइस्ट आवर किंग लूथरन चर्च में सिसावा की जानब से नशर किया जाता है। आप प्रोग्राम को रेडियो के जरिए सुन रहे हैं और टेलीफोन पर सुनने के लिए टोरंटो में टेलीफोन नंबर है 6478724900। और अभी आप फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं। आप अगर आपने फेसबुक ऑन की है तो आप देख सकते हैं पास्टर जेम्स लूक को और मेरी आवाज आप सुन सकते हैं। जस्ट टू लॉग इन www.masikiawaz.ca और कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में सुनने के लिए आप टेलीफोन नंबर eawaz.com की वेबसाइट से बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मसलन मंट्रियाल, कैलगरी, एडमिंटन, रिजाइना और वैनकूवर के टेलीफोन नंबर। आप इस प्रोग्राम को eawaz.com के जरिए भी सुन सकते हैं। हमारे जो चर्च का टेलीफोन नंबर है 905-822-8931 और मेरा टेलीफोन नंबर 6473390397 और पास्टर जेम्स लूक का टेलीफोन नंबर 4164542581 है। जैसा कि सामीन मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो पास्टर जेम्स लूक के लिए वो है डिवोर्स, तलाक, जुदाई, जुदा करना। तो हम देखेंगे कि आज के जमाना में इस इल्लत की कितनी बड़ी जरूरत इंसान समझता है और बल्कि बढ़ती जा रही है। इंसान توجہ نہیں کرتا کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان کی زندگی میں، معاشرے کی زندگی میں، یہ کیا ان کا اثر پڑتا ہے. اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور آج پاسٹر جیمز لو اسی کے اوپر وہ بات کریں گے. اس سے پیشتر ہم آگے چلیں، میں پائی صاحب سے کہوں گا کہ ابتدائی دعا میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. جی پائی صاحب،
آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ذہن جو ہیں وہ عالم بالا پر لگائیں، خدا سے رابطہ قائم کریں. خدا ہم خدا ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں ایک اور خوبصورت دن کے لیے جو تم نے ہمیں دیا کہ ہم سندھوں کی زمین پر قائم رہ سکیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک کینیڈا کے لیے، اور خصوصاً آج جب کہ تھینکس گیونگ ڈے، اے خدا ان کل ہم مناتے ہیں کہ اے خدا ان تیری تمام برکات کا شکریہ ادا کریں. اے خدا ان سب کے دل جو ہیں تیری طرف مبذول ہوں، اور اے خدا ان تو جو کریٹر ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، خوراک پیدا کرتا ہے اور نعمتیں تو ہمیں دیتا ہے، اس کا شکر ادا کر سکیں، اپنے خاندانوں کے لیے شکر ادا کر سکیں، اور اے خدا ان اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے شکر ادا کر سکیں. اے خدا ان ہم اس ملک کے لیے جس میں ہم آرام اور چین کی زندگی گزارتے ہیں، کینیڈا کے لیے خصوصاً اے خدا ان شکریہ ادا کر سکیں. اسی طرح سے اے خدا ان خدا ہم شکر کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے برکت چاہتے ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈیو سے اے خدا ان یہ پروگرام نشر کرتے ہیں، AM 770 سے، ٹورانٹو سے، اور eawaz.com سے. اے خدا ان خدا ہم شکر گزار ہیں تمام سننے والوں کے لیے جو اپنے کمپیوٹر اور ریڈیو آن کر کے اے خدا ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں. تیرے پاک کلام کے ذریعے سے سب کو فردن فردن برکت دے. اے خدا ہم ان لوگوں کو نہیں بھولتے جو کمزور اور بیمار ہیں، اور خصوصاً وہ جنہوں نے اپنے نام ہمیں دے رکھے ہیں. پہلے ہم شکر گزار ہیں کہ بہت ساری دعائیں تو ہماری سنتا ہے، اور تو نے بہتوں کو اے خدا ہم تندرست کر دیا. لیکن اے خدا ان جو ابھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو، ان پہ رحم کر، اور اے خدا ان خدا وہ بہن کے لیے جو منٹریال میں ہیں ان پہ رحم کر، وہ بھائی دو جو کینسر سے سٹرگل کر رہے ہیں ٹیکسلا پاکستان سے ان پہ رحم کر. اے خدا ان خدا جو ہمارے یہاں پہ ٹورانٹو میں ہیں ان پہ رحم کر. اے خدا ان باقی ماندہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہو، یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے مقدس نام میں، آمین.
کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدد سرائی کرنا اے حق تعالی. صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا. میں تیری سنتکاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا. اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں اور تیرے خیال بہت عمیق ہیں. اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ ماروں، خوشی سے خداوند کی عبادت کروں، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے. خداوند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین. سامعین آئیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خوبصورت گیت سنتے ہیں. میں شروع کروں
तुझको ही जलाल मैं दूँ, ऐ खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूँ। तूने संभाला मेरी आंखों को बख्शा उजाला, मेरी सांसों को तूने संभाला मेरी आंखों को बख्शा उजाला, गए दिन की थकन को मिटा के मेरी रात को सुबहों में ढाला, हर घड़ी के हर पहर में तेरे नाम का मैं जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल मैं दूं, ऐ खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। हाथ को मुझ पे बढ़ा दे मेरी राहों को सीधा बना दे, अपने हाथ को मुझ पे बढ़ा दे मेरी राहों को सीधा बना दे, रूहे पाक की हो रहनुमाई मुझे अपने लहू छुपा दे, हो बाबरकत और जलाली हर एक दिन जो बसर करूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल मैं दूं, ऐ खुदावन हर
खुदावन हर नया दिन मैं तेरे नाम से शुरू करूं। हम भी आज का जो प्रोग्राम है खुदावन के नाम से शुरू करते हुए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ होते हैं और खुदावन के जिंदा कलाम को सुनते हैं। आज देखेंगे कि फादर जेम्स लुक साहब हमें क्या खुदावन के कलाम से बताते हैं। जी पाई सम
जी, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सुना है कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। आपको मालूम है कि डाइवोर्स या तलाक जो है आई थिंक ये सबसे भयानक चीज है जो किसी मैरिड लाइफ में होता है, और हम ये भी जानते हैं कि आजकल जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया जो है उसमें ये तलाक जो है बड़ी आम सी बात समझी जाती है और बहुत ही एक्चुअली ये कॉमन हो चुकी है। मुझे याद है कि एक दफा मैं एक मुसलमान दोस्त से मैं बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि उसने बताया मुझे कि मैं कैनेडा कि मैंने 7 शादियां अटेंड की हैं और अब 7 की 7 डाइवोर्स हो चुके हैं। ये हमारी आज की इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें डील करना है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का पाकलाम है, और खुदा का पाकलाम का फायदा ये है कि जब हम खुदा के पाकलाम उसकी तालीम पे चलते हैं, खुदा यीशु मसीह की तालीम जो है उस पे चलते हैं, तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए आइए हम देखते हैं कि खुदा उनका पाकलाम हमें क्या बताता है। मेरा और मैं एल्डर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए ये हिस्सा पढ़ें। मरकस रसूल की इंजील है और उसका 10वां बाब है और 2 से लेकर 16 आयत तक हम सुनेंगे, और गौर से सुनिए ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जी एल्डर साहब
जी, खुदा यीशु मसीह यहाँ तलाक के बारे में तालीम देते हैं। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या यह रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने उनसे जवाब में कहा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाक नामा लिखकर छोड़ दें। मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए यह हुक्म लिखा था, लेकिन खलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है, और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। खुदावंद अपने जिंदा और मुकद्दस कलाम के बड़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।
बहुत शुक्रिया
जी भाई साहब।
यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कुछ फकीह फरीसी हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं, और फरीसियों ने पास आकर उससे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? हम देखना चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह के टाइम पे जो फर्स्ट सेंचुरी थी उस वक्त क्या सिचुएशन थी। सिचुएशन ये थी कि यहूदी लोग जो थे, जो कि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रिचुअलिज्म में फंसे हुए हैं, वो रवायात में फंसे हुए हैं। पिछली दफा हमने इसका जिक्र किया था कि किस तरह से रस्मों रिवाज जो हैं वो होते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर हम रस्मों रिवाज में फंस गए उसकी रूहानियत को ना समझें जो कि खुदा यीशु मसीह हमें बताते हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। और यही बात है, खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि इंसानियत जो खराब हो चुकी थी, इंसानियत जिसमें बहुत सारी बीमारियां आ चुकी थी, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन यहूदी लोग इतने रस्म और रिवाज में फंसे हुए थे कि वो नहीं चाहते थे, इसलिए खुदा यीशु मसीह को वो पसंद नहीं करते थे। आज भी यही बात है, जब हम खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं लोगों के सामने, सो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। वो इसीलिए तकलीफ होती है क्योंकि उनकी सोच जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हम यहां पे देखते हैं कि फरीसी जो है, अब हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक ये मिलता है कि चूंकि उस वक्त ये प्रॉब्लम थी, आज भी ये प्रॉब्लम है, और फिर उसका हल हमें देखना है कि क्या है। अब यहां पे सवाल पूछते हैं, अब हमें यही देखना है कि ये जगह कौन सी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जगह का तायुन किया गया है, और वो पहली आयत है, फिर वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यर्दन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तारीख देने लगा। अब ये खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी दिन है, इससे पहले कि उनको सलीब दिया जाए, और ये फरीसियों की आखिरी कोशिश है कि किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को वो ट्रैप कर सके। अब ये जो है, ये इलाका जो है, अगर आप ज्योग्राफी से वाकिफ हैं तो ये इलाका परिया का है। परिया भी एक सूबा था, जैसे यहूदिया है, जैसे सामरिया है, जैसे गलील का इलाका है, इसी तरह से परिया का इलाका जो था ये सामरिया और गलील के साथ मिलता था, और ये लिखा हुआ है कि यहूदिया भी साथ मिलता था और ये यर्दन के उस पार था, यानी कि अब जो उर्दन का इलाका है या जॉर्डन का इलाका है। अब मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इस इलाके में जो हुक्मरान था वो जो था वो हेरोद, हेरोद द ग्रेट जो था, उसके चार बेटे थे। वो उसने मरने से पहले चारों बेटों को मुख्तलिफ पूरे इसराइल को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया और उनपे एक एक हिस्से पे एक एक बेटे को बिठा दिया था। और हम देखते हैं कि फिलिप जो है वो नॉर्दर्न नॉर्थ में है, नॉर्थ इसराइल में, और जो लोग मेरे साथ गए हैं इसराइल वो जानते हैं कि फिलिपी का इलाका जो है वो वहां फिलिप जो था, जहां से दरियाए यर्दन निकलता है, बिल्कुल सीरिया का बॉर्डर है, वहां पे वो फिलिप था। और ये इलाका जो है परिया का इलाका, यहाँ पे एंटीपास है, एंटीपास हेरोद का बेटा है दूसरा, जिसके, और यहाँ पे हुई प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि फिलिप की बीवी हेरोदियास को उसने वहां से उसको तलाक दिया है, या उसको इसने एंटीपास ने अपने भाई की बीवी जो है वो छीन ली है और उसने अपने पास रखी हुई है। और जब अपने पास से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको जाके चैलेंज किया था, और जब उसको चैलेंज किया था तो उसने क्या किया था, उसने उसका सर कलम कर दिया था, उसने उसको मार दिया था। अब ये इलाका है जहां पे कि यहूदी जानबूझ के उन्होंने ये सवाल किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि एंटीपास को जब खबर मिलेगी तो वो खुदावंद यीशु मसीह को भी मार देंगे, इसलिए उन्होंने ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह से किया है। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तो खुद खुदा है, इसलिए वो इनके ट्रैप में नहीं आते। इसलिए अच्छा, एक और बात है, यहूदियत में दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, और वो दो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या थे, एक स्कूल ऑफ थॉट तो था, वो स्कूल ऑफ थॉट इस तरह से होते हैं कि आपके कुछ लीडर्स हैं या मजहबी लीडर कह लीजिए उनको, जैसे इनको रैबाई कहा जाता है यहूदियत में, उन एक रैबाई था शामाई, शामाई रैबाई था, उसने हम देखते हैं कि ड्यूटरोनमी 24 जो है उसको किस तरह उसने इंटरप्रेट किया था। पहले हम जानना चाहते हैं ड्यूटरोनमी जो है ये तौरा की किताब है, चौथी किताब है, उसको इस्तिश्ना उर्दू में कहा जाता है, ड्यूटरोनमी 24, और उसकी पहली चार आयात हम सुनना चाहते हैं। पहले वो गौर से सुनिएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, इस्तिश्ना 24 फर्स्ट फोर जो आयते हैं, एल्ड साहब हमारे लिए पढ़ेंगे, जरा जोर से पढ़िए ताकि सबको समझ आ सके।
जी भाई साहब, टेलीफोन के जरिए काफी कोशिश करता हूँ लेकिन आपको पता है कि आवाज उसी तरह जाती है। एनी हो, जैसा आपने बताया कि तौरा की ये पांचवी किताब है जो इस्तिश्ना 24 बाब 1 से जितनी आपने चौथी आयत तक मैं तलावत करूंगा। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ से इल्तफात ना रहे, तो उसका तलाक नामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। अगर उस दूसरा शोहर भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाक नामा लिख कर उसके हवाला करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शोर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शोर
جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد اس سے بیاہ نہ کریں کرنے پائے, کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گناہگار نہ بنانا. جی پائے,
بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور آیت دیکھیں گے, پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور 24 آیت. دوسرا باب اور 24 آیت اس طرح سے ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے, اور وہ ایک تن ہوں گے. اور یہاں پہ بھی متس میں جو ہم نے پڑھا ہے یہی بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے جو چھٹی آیت ہے, لیکن خلقت کے شروع سے ہی انہوں نے مرد اور عورت بنایا. اس نے مرد اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے, بس وہ دو نہیں کہ ایک جسم ہوں گے. اب یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دو سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک شیمائی کا ہے جو کہ وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ استثناء جو 24 باب ہم نے پڑھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں صرف زنا کی حالت میں, اڈلٹری کی حالت میں. اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہلال کا ہے. ہلال جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ ایسے کرتا ہے, وہ جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کچھ لبرل ہے, بہت لبرل اسکول آف تھاٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو آپ اس بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ بات جو ہے موسیٰ کی شریعت میں ان کو ملتی ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے بڑی اچھی طرح سے یہ بات کہی ہے ان کو کہ موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ اس لیے لکھی گئی تھی کہ تمہارے دلوں کی سختی کی وجہ سے, تمہارے دلوں کی سختی فریسیوں سے کہا گیا ہے, یہ نہیں کہ آپ جو مرضی آپ کی ہے تو آپ چھوڑ دیں. اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے لکھ کے دو, اور وہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے وہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ اس عورت کی پروٹیکشن ہو. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وہ بیک گراؤنڈ دیکھنی ہے, اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ پہلی صدی میں کیا تھا. پہلی صدی میں یہ تھا کہ جیسے آج کل ہے, میں چونکہ پاکستان سے ہوں, میں وہیں پیدا ہوا وہیں رہا, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ہمارا جو آئی ڈونٹ نو, میرے دوست میرے احباب جتنے بھی ہیں دے آر ویری کلوز ٹو می اسلام میں, لیکن اسلام میں اب اگر پاکستانی ڈرامے آپ دیکھیں تو ان میں ہر جگہ پہ طلاق ہوتا ہے, اور طلاق جو ہے وہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے. تھوڑی سی بات ہوئی ہے, بیوی نے کھانا اچھا نہیں پکایا, طلاق ہو گیا. بیوی نے یہ نہیں کیا, طلاق ہو گیا. ایک اور میں نے اس کی کاؤنسلنگ بھی کی تھی, ایک کپل تھا, اس نے عورت نے کسی طریقے سے ان کی سیپریشن کیوں ہوئی, کیونکہ آدمی جو تھا وہ شاور ہیڈ اتار کے نہاتا تھا. اب آپ خود جانیں کہ یہ ایسی ٹریویل سی باتیں ہیں جن کے اوپر طلاق ہو جاتا. اسی طرح سے یہودیت میں بھی پہلی تو بات یہ ہے کہ عورت کا مقام جو تھا وہ ایک ایکسپینڈیبل آئٹم کی طرح تھا, جب مرضی لے لیا, جب مرضی چھوڑ دیا, جب مرضی طلاق دے دیا. اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح ہی بہت دفعہ بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے. اب یہی بات ہے, یہ پرابلم ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا, بھائی سنو کہ آپ کو روحانیت کی طرف جانا چاہیے نہ کہ سیپریشن کی طرف. اب خدا کا ڈیزائن جو تھا وہ تو یہ تھا, لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ آپس میں ہوں گے اور ان کو کوئی جدا نہ کرے, کوئی انسان جدا نہ کرے. اور لکھا ہوا ہے یہ جو ہم نوی آیت آج مقدس مرکز سے پڑھتے ہیں, دسواں باب جو ہے اس میں لکھا ہے, اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے उसे आदमी जुदा ना करे,
ना करे,
उसे आदमी जुदा ना करे। और यही बात है कि जब तक, अब मैं थोड़े से एक तरह से सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी बातें करूंगा जो आपके गोनशीन हो चाहिए, आपको उस पर गौर करना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहली तो बात यह है कि जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। जैसे यहूदियत में भी ये समझा नहीं जाता था, वो तो खुदावंद यीशु मसीह को मारने के चक्कर में थे और अल्टीमेटली उन्होंने मार भी दिया था, लेकिन वो भी खुदा का एक डिजाइन था जिसकी वजह से कि सैल्वेशन, यानी कि खुदा मेरी और आपकी जो है वो सैल्वेशन होनी थी। लेकिन मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह ने, आपको मालूम है कि मसीहत जो है वो दिलों पे हुकूमत है। यहूदी लोग यही सोच रहे थे कि कोई मसीहा आएगा और उन्हें रूमी हुकूमत से छुटकारा देगा, लेकिन खुदा यीशु मसीह का आना जो था वो मसीहा तो थे और मसीहा हैं, लेकिन वो दिलों पे हुकूमत करने वाले मसीहा हैं। वो कोई लड़ाई उड़ाई वाले मसीहा नहीं थे, उन्होंने कोई रूमी हुकूमत को लड़के रिमूव नहीं करना था। और अब ये लोग जो हैं इस बात को समझते नहीं हैं। आज भी खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हैं और ये कोई नहीं कह सकता कि वो मरे हुए हैं। हमारे इस्लामी भाई भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदा उठा लिए गए हैं। वो गो के उनकी कॉन्सेप्ट जो है खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक वो सही नहीं है, वो सिर्फ जानते हैं कि वो एक अच्छे बड़े नबी हैं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, वो नबी सिर्फ नहीं है बल्कि वो खुदा है। वो खुदा है जो इंसानी सूरत में, वो चरनी में पैदा हुआ। जब हम क्रिसमस की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो चरनी में पैदा होते हैं, उनकी पैदाइश जो है, उनकी कंसेप्शन जो है वो भी सुपर नेचुरल है। उसके बाद उनकी पैदाइश सुपर नेचुरल है, उनके मौजाद सुपर नेचुरल है। कौन सा इंसान है जो इस तरह की बातें करता है? कभी आप गौर करके देखें। अब यहां खुदावंद यीशु मसीह उनको यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रूहानियत की तरफ जाओ। अब मैं यही बात कहूंगा कि क्यों आजकल हमारी दुनिया में इतना तलाक है। इतना तलाक इसलिए है क्योंकि लोग रूहानियत से बहुत दूर हैं, खुदा से बहुत दूर हैं। और मैं उसके लिए पेरेंट्स को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम उस राह पे करें जो कि इंसान में लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है अपने बेटे की तालीम उस राह पे कर जिस राह पे उसको जाना है। और मेरे भाई और मेरी बहन, आज जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आज थैंक्सगिविंग डे है। थैंक्सगिविंग डे का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा खाना खाएं और आप खुदा उनका शुक्र अदा करें, बल्कि आप एक ऐसे दिन जो है, ये माइल स्टोन्स हैं हमारी जिंदगी में। हम इन आज के दिन ये सोचें कि क्या हम अपने बच्चों की तालीम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई तालीम पे कर रहे हैं, या उनको हमने सिर्फ एक रिचुअलिज्म में रखा हुआ है, या हम सिर्फ रिचुअलिज्म में जाते हैं। सो पहली बात मसीहों के लिए मैं ये कहूंगा कि जो लोग क्रिश्चियंस हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि उनको ये चाहिए कि वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तब से ये तालीम दे जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। और वो जब आप देख लीजिए, मैं ये बड़े बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आप नॉर्थ अमेरिका में क्यों लोग भागे चले आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि इनके अबाओ अजदाद में जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये सब के सब लोग जो थे ये गॉड फियरिंग थे, ये खुदा यीशु मसीह की तालीम पर चलते थे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। और इसीलिए वो आज तक वो तालीम जो है वो लागू है और वही प्रिंसिपल जो हैं उन पे ये मुल्क चलते हैं। इसीलिए लोग भागे 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 यहां पे आते हैं क्योंकि इन मुल्कों में शहद और दूध बहता है और ये खुदा की ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए आपके खानदानों में भी ये ब्लेसिंग्स आ सकती हैं प्रोवाइडेड कि आप इन बातों को समझें। खुदावन यीशु मसीह यही बात उनको यहूदियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप खुदा की दी हुई तालीम पे अमल करेंगे तो कभी तलाक नहीं होगा, आप खुदा से डरेंगे। आज आज तो इंसान जो है खुदा से डरता ही नहीं है, खुदा को समझता ही कुछ नहीं है, खुद खुदा बना बैठा है। इसीलिए ये बातें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं कि हम इनको हमको गौर से सुने, क्योंकि लिखा हुआ है कि उनके हार्ट जो हैं, उनके दिल जो हैं इतने सख्त हो गए कि उनको ये मूसा को ये लिखना पड़ा कि अगर तू अपनी बीवी को छोड़े तो तलाक नामा लिख के दे। इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि खुदा का जो डिजाइन है वो हमने लिखा, हमें यहाँ पे दिया गया है कि वो एक तन होंगे। एक तन का मतलब यह है वो जुदा नहीं हो सकते। जब एक तन है उसको आप काट नहीं सकते, उसको आप जुदा नहीं कर सकते। और यही बात जो है ये सिर्फ मैरिज में ही कहा गया है, मैरिज में ही कहा गया है। हमें यही बात जो है आज सोचना है कि तलाक का लफ्ज निकाल दें। जब आपके बच्चे जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पे चलेंगे तो आप कभी तलाक की सोचेंगे भी नहीं, अब डरेंगे खुदा से कि ऐसी बात हो कि ये डरेंगे, क्योंकि यही बात जो है हमें आज जानना चाहिए। और यही बात जो है यूं जानना चाहिए क्योंकि खुदा जो है वो हमें प्यार करता है, आपको भी प्यार करता है, मुझे भी प्यार करता है। और उसके प्यार की हद ये है कि खुदा ने जहान से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये प्यार की हद है। वो कहां आपको मिलती है ऐसी, ऐसा प्यार आपको कहीं मिलता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान दे दे? खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए इंसानी रूप धारा था, क्योंकि अगर आप कुर्बानी की कॉन्सेप्ट को जानते हैं, कुर्बानी की कॉन्सेप्ट यह थी कि खून के बदले खून। जो शरीयत है वो यही कहती है खून, जब तक खून बहाए बगैर माफी नहीं। इसीलिए कुर्बानी जो है उसका आगाज हुआ था जब खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दे, तो वो माउंट मोरिया जो था, वो पहाड़ जो था, मोरिया का पहाड़, वहीं पे उसकी कुर्बानी दी गई थी। लेकिन वो कुर्बानी जब देने के लिए इब्राहिम वहां पे पहुंचा है तो खुदा ने जब उसने खंजर उठाया कुर्बानी के लिए तो खुदा ने कहा तेरी कुर्बानी कबूल हुई। और उसके बाद उसने मुड़ के देखा कि एक मेंढा जो है वो झाड़ी में अटका हुआ है, तो उसने कहा कि खुदा ने कहा कि ये मेंढा ले और इसको कुर्बान कर। और वो कुर्बानी जो थी आने वाली कुर्बानी का पेश खैमा थी। और वो आने वाली कुर्बानी कब हुई है? 2000 साल के बाद खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी हुई है उसी पहाड़ पे। और जो लोग मेरे साथ जा चुके हैं वो देखते हैं कि जहां पे वो सलीब गाड़ी गई थी वो मोरिया का पहाड़ है, वो वही पहाड़ है जहां पे इब्राहिम ने कुर्बानी का आगाज किया था। और वो 2000 साल तक यहूदी लोग, हमारे इस्लामी भाई अभी भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कुर्बानी जो थी वो खत्म हो चुकी, वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि वो शुरू हुआ था इब्राहिम से और वो खत्म हुआ है खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी पे, क्योंकि एक ही दफा कुर्बानी वो हो चुकी है। वो हमारे सरदार कहे हैं, वो ही उन्होंने जब अपनी कुर्बानी दी है, अपना खून बहा दिया है। तो वो ये बड़ी गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि उस कुर्बानी की वजह से आज हम बच चुके हैं। जो लोग खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, जो उनका शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं या करने वाले हैं, आज मौका है थैंक्सगिविंग डे वाले दिन कि आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ताकि वो कुर्बानी जो है वो आप पे भी लागू हो सके। लेकिन जब आप कबूल नहीं करते हैं तो वो कुर्बानी लागू नहीं हो सकती है। वो एक आपके पास प्रोविजन है, खुदा ने यही बात कही है कि उसने आप पे वो छोड़ा है कि आप उसको कबूल करें या ना करें, ये आप पे मुनहसर है। मेरे भाई और मेरी बहन, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज इस झंडे तले आ चुके हैं, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि आखिरकार हर एक घुटना झुकना है। और यही बात है जब, और उसका फायदा क्या है कि जब आप खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो तलाक तो दूर की बात है, तलाक तो दूर की। जब आप कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी में भी तलाक होते हैं, हाँ सेपरेशन होती हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो खुदावन के पाकलाम को सही तौर पर नहीं जानते, उनके बच्चे सही तौर पर नहीं जानते। क्योंकि आपको मालूम है कि ये दुनिया जो है ये एक सेल्फिश किस्म की दुनिया है, हर एक आदमी सेल्फिश है, जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए, जो मैं कहती हूं वही होना चाहिए। और मुझे याद है एक और, मैं मुझे जब एयरफोर्स में थे तो एक और केस मुझे याद है, उनकी सेपरेशन क्यों हुई, क्योंकि वो जो बंदा टेबल लैंप लेके आया था वो पीवी को पसंद नहीं था और उस पर उनकी लड़ाई हो गई और उसके बाद उनकी सेपरेशन हो गई। इट्स सो सैड, इट इज वेरी सैड। और हम जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, यहां पे तो बाबा आदम ही निराला है, खुदा ही निराला है, यहां पे खुदा को तो समझते ही कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन एवरी कल्चर, सिखिज्म में देख लीजिए, हिंदुइज्म में देख लीजिए, इस्लाम में देख लीजिए, इवन क्रिश्चियनिटी में भी। क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कहते हैं तो अपने आप को क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका खुदा के साथ कुछ ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से ये यहूदी लोग जो थे, इनका इनके रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं था, और ये खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने के चक्कर में थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से वो एंटिपास जो है वो किसी तरह से वो मार दे खुदावंद यीशु, अल्टीमेटली उन्होंने मार दिया। और वो यही बात है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे, वो आज भी चाहते हैं, आपके लिए भी ये इन्विटेशन है। अगर आप इसमें और मजीद जाना चाहते हैं तो हमारे से रابطہ कायम करें। आपको हमारे फोन नंबर बता दिए गए हैं, फिर बता दिए जाएंगे। आपको अगर बाइबल मुकद्दस का चाहिए तो आप हमसे रابطہ कायम करें, हम आपको फ्री में ये भेजेंगे। खुदावंद का पाकलाम जो है वो फ्री है, उसमें कोई चंदा नहीं देना पड़ता, कोई कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ खुदावंद आपने घुटनों पे जाना है, दुआ करनी है, और आपको हमेशा की जिंदगी जो है वो हासिल हो सकती है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन
आमीन। बहुत शुक्रिया पाई साहब खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए। वक्त बड़ी जल्दी से गुजरता जाता है और कोशिश करते हैं कि हम पाई साहब से दो क्वेश्चन भी पूछ सकें। इससे बेहतर कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं, आए हैं, खूबसूरत गीत सुनते हैं और खुदावंद का कलाम जिस तरह मैंने पहले पढ़ा कि जिसको खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना कर सके।
जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल खड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना।
यीशु की शहजादी है ये रखना उल्फत से, रखना उल्फत से। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। दुख सुख में तू लिपटी रहना, दिल जान से जुदा ना करना, दिल जान से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। झूठी सच्ची बातों से कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल खड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना।
अरे जो आपने खूबसूरत गीत सुना, इसमें बहुत बड़ा मैसेज था और अभी इसके ऊपर कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने बड़े दिल से और सच्चाई से सुना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिल पर यह खुदावन का कलाम गीत के जरिए असर जरूर करता होगा। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक हमारे साथ होते हैं और खुदावन के जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं और सुनते हैं। कलाम फरमाता है कि अगर हम उसे सुने, उसके अपने दिल में रखें, ये ना हो कि एक काम से सुने दूसरे से निकाल दें, या हम माइक के ऊपर बैठ के बातें करें लेकिन अपनी जिंदगी में उसे ना अपनाएं। पहले हमें अपना देखना है। सो काश के हमारी जिंदगियां खुदावन यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हों, ताकि देखने वाले, सुनने वाले, اور ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے خداوند کے کلام سے برکت پا سکیں. آج کے کلام کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے. آج کے زمانے میں جس طرح لوگ کرتے ہیں, خدا ان تمام باتوں سے ہم سب کو بچا کے محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں پاسٹر جیمز لوک کا ٹیلی فون نمبر, ان کا نمبر ہے 416-454-2581. اگر آج آپ کو کوئی بھی سوال یا کوئی بات چیت ان سے کرنی ہو تو آپ براہ راست ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور چرچ کی کوئی انفارمیشن چاہیے, ریڈیو پروگرام کے متعلق کوئی انفارمیشن چاہیے, ڈونیشن کے متعلق کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے, یا آپ کو خدا کا زندہ کلام چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں. میرا نام کمل دین ہے, میرا ٹیلی فون نمبر ہے 647-339-0397, میرا ٹیلی فون نمبر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر اتوار آتے ہیں اور خداوند کے خوف سے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تاکہ ان باتوں کو جو خداوند کا پاک روح پالی صاحب کو اور ہمیں ہدایت کرتا ہے اس کے مطابق ہم اس پروگرام کو چلا سکیں. کیونکہ جب ایک کسی کام کو دل سے کیا جاتا ہے تو خداوند اس پہ بڑی برکت ڈالتا ہے, کیونکہ دلوں اور گردوں کو جانتے ہیں والا صرف خدا ہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں اگر ٹورانٹو میں آپ نے یہ پروگرام سننا ہو تو ٹورانٹو میں ٹیلی فون نمبر آپ ڈائل کریں 647-872-4900, اور فیس بک پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اگر آج نہ ٹائم ملا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, ایک ہفتے تک یہ فیس بک رہتی ہے. جسٹ لاگ ان ٹو www.masikiawaz.ca پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی عزیز ہیں, رشتے دار ہیں جو مونٹریال, کیلگری, ایڈمنٹن, ریجائنا, وینکوور میں رہتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ ای آواز کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں ان کے اپنے لوکل جو ٹیلی فون نمبر ہے بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور پروگرام کو سن سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ eawaz.com کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا کہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے, اور اگر آج آپ تھینکس گیونگ منا رہے ہیں اپنے خاندانوں میں یا کل منائیں گے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی کھانا کھا سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فوڈ سٹورز میں انہوں نے فوڈ بینک کے بیگ رکھے ہیں, اگر آپ آج یا کل جا کر ڈونیٹ کریں تو خدا عمدہ آپ کو بڑی برکت دے گا. جی پائی صاحب, وقت بڑی جلدی سے گزرتا جا رہا, میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی ٹائم میں مجھے بتائیں گے اور سننے والوں کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوگا کہ وٹ از بیڈ افیکٹ آف ڈیورس, جو ڈیورس ہے, طلاق ہے, اس کا جو افیکٹ ہے یا اس کا اثر ہے وہ کیا پڑتا ہے انسان پر, میاں بیوی پر, بیوی بچوں پر, رشتے داروں پر, معاشرے پر. جی پائی صاحب,
آپ دیکھیں کہ اگر جو میں تصویر دکھا رہا تھا فیس بک پہ, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ طلاق میں دو خاندان جو ہے, ایک خاندان وہ سپلٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارا جو نارتھ امریکن معاشرہ ہے وہ بڑا ہی ظالم معاشرہ ہے. ظالم اس لیے کہوں گا کہ یہ اکنامک بیسڈ معاشرہ ہے. اکنامک بیسڈ معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جب طلاق ایک طرح سے وہ پروموٹ کرتے ہیں, یہ معاشرہ جو ہے پروموٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سے طلاق ہو تاکہ دو گھر ہوں, دو گھر بیچے جائیں, دو فریج بیچے جائیں, دو ہر ایک چیز دو دو چیز ہو جائے گی تو ان کی ڈبل سیل ہو جائے گی.
یہ پائشہ میں یہ کہوں گا کہ آج سے, یہ آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا لیکن آج سے 50-60 سال پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن چونکہ آپ نے بتایا کہ آج کل یہ زمانہ اس طرح آ گیا کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھتے ہیں, جیسا آپ نے بتایا دو خاندان ہو, ہر چیز دو ہو جائیں, دو اکاؤنٹ ہو جائیں, دو گاڑیاں ہو جائیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ دو خاندان بن جاتے ہیں. اور وہ خاندان کیا ہوتے ہیں, اس میں نہ کوئی محبت ہوتی ہے, نہ کوئی
خاندان تو بنتے ہی نہیں ہے نا, خاندان نہیں بنتے ہیں, وہ انڈیویجول, یہ انڈیویجول بیسڈ معاشرہ ہے. اور اسی لیے یہ معاشرہ جو ہے اس میں خرابیاں آ چکی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے بہت دور چلے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ خدا کو تو یہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے نا, یہ تو خود خدا بنے بیٹھے.
ان کا ڈالر خدا ہے پائی صاحب, میں تو یہ کہوں گا جہاں ڈالر
ڈالر خدا ہے. تو اسی لیے دیکھیں ये जब तलाक होता है लॉयर्स कमाते हैं
जी, you know?
फिर उसके बाद कस्टडी का चक्कर आ जाता है बच्चों का, लेकिन इसमें जो आने वाली नस्लें हैं वो तबाह हो जाती है। जो कि अगर आपके जैसे उन लोगों का जिनका तलाक, एक में अभी मेरे स्टूडेंट हैं वो मैं मतलब किसी मसीही नहीं है, वो डॉक्टर मतलब पाकिस्तान में डॉक्टर थे, और वो उन्होंने मुझसे शेयर किया और उन्होंने बताया कि उसके तीन बच्चे और तीन बच्चे ऑलमोस्ट कॉलेज गोइंग है और वो अब उनका तलाक हो गया। अब ये है कि वो सेपरेशन हो गई है, अब उनको समझ में नहीं आ रही, कह लगे कि मैं मेरा तो दिमाग ही जो है वो तवाजन सही नहीं रहा है, और ये बात सही है, बहुत मुश्किल हो जाता
है टेलीफोन। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो जाती है इफेक्ट के लिए, तो बहुत ज्यादा बातें हैं अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन अभी आपने घंटे की आवाज सुन चुके,
बड़ा लंबा टॉपिक है और बड़ा अच्छा टॉपिक है,
तकरीबन 9 चीजें मैंने लिखी हैं जो कि इसके इफेक्ट होता है, और ये हम पे होता है, हमारे खानदानों पे, मुआशे पे होता है, और इससे मुआशा तबाह होता जाता है। एनी हाउ, आपने बेल सुन ली है, खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने खानदानों का भी, और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हुए हम आपको अपनी टीम की तरफ से, रेडियो मसीह की टीम की तरफ से हैप्पी थैंक्स गिविंग। खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज सर।
मौजूद सामईन, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने प्रोग्राम मसीह की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर सुना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपने बहुत बरकत पाई होगी। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने अजीज़ वकारिब का ख्याल रखें। अगले इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा ने निगेबान, मसीह यस्सू का फजल आप सब पर हो, आमीन।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
आई खुशबू
का दी,
दिवाली दी फूड बेसिक्स दे किचन्स ऑफ द वर्ल्ड दे नाल, हुन हर किचन चो आएगी खुशबू, खुशबूदार नूर बासमती राइस दे नाल, जो ने 599 क्रीमी ट्रुसेले पनीर सिर्फ 379 ते डिलिशियस सीडर बीन्स सिर्फ 99 सेंट्स विच। आई खुशबू
नहीं
आ जाएगी, एट फूड बेसिक्स, ऑलवेज मोर फॉर लेस।
Do Box, wood-fired pizza and pasta, the real Italian specialty pizza, the fresh garden salad bowl, dessert and kids menu. Build your own pizza with unlimited toppings for only $14.95 plus tax. Find us in Hamilton, Oakville, Mississauga, downtown Toronto. Call and place your order today, 289-389-2050. For menu and location, visit dobox.ca. Download Do app and earn points.
ऑटिज्म वाला हर बच्चा खास है और उन्हां दा परिवार भी। एरेनो किड्स इस गल नूं समझदे ने और एक विस्तारित माहौल दे विच वातावरण ऑटिज्म दियां सहूलतां देंदे ने। इस दे नाल ही परिवारां दे नाल कम करदे ने ताकि उन्हां दा बच्चा पूरी समर्थता दे नाल परवान चढ़ सके। साडियां सेवावां लैण वास्ते ब्रैम्पटन, मिसिसागा और ओकविल सेंटर्स नूं विजिट करो। एरेनो किड्स हर कदम ते तुहाडे नाल 20 साल तों, लेकिन पहला कदम है विजिटिंग
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS lawyers ko inna sare sawalan de jawab te tuhade haq le ladan waste liyaqat hai. Apne haq janan layi ya salaan lain layi aaj hi SNS lawyers nu call karo 416-655